निपुड़िया ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, हाँ भट्ट, मेरे भाग आने के कारण तुम ही हो, तुम्हारा दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि मेरी ही जीत होने वाली है, परंतु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को चूर कर दिया। निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि क्या मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे भीतर न देवता है न पश है, एक अधिक जड़ता। मैं इसीलिए वहां ठहर नहीं सकी। जीवन में मैंने उसके बाद बहुत दुख झेले हैं, पर उस क्षण भर के प्रत्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। 6 वर्षों तक इस कुटिल दुनिया में असहाय मारी मारी फिरी, और अब मेरा मोह भक्ति के रूप में बदल गया है। भट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। 6 वर्ष के कठोर अनुभवों के बल पर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी जड़ता ही अच्छी थी। मैं अभागिनी थी जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आई। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है उसे जानने की क्या जरूरत है। आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अंतःपुर में पान पहुँचाया करती हूँ। सब मिलाकर मैं दुखी नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। यदि इस नगर में रहो तो कभी कभी दर्शन पाने की आशा मैं अवश्य रखूंगी, पर तुम इस दुकान पर अधिक देर मत ठहरो। यहाँ आने वाले लोग स्त्री शरीर को देव मंदिर नहीं मानते। इतना कहने के बाद उसने एक बार हंसकर मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में अपने ऊपर एक प्रकार की वितृष्णा का भाव था, पर किसी प्रकार का पश्चाताप या अनुशोचना का लेश भी नहीं था। जरा रुक कर वह फिर कहने लगी, भट्ट, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैं जो हूँ उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती थी, परंतु तुम जो कुछ हो उससे कहीं श्रेष्ठ हो सकते हो। इसलिए कहती हूँ तुम यहाँ मत रुको। मैं पश्चाताप करूँ तो जिस नरक में पड़ी हूँ वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम संभल जाओ तो जिस स्वर्ग में स्थान पाओगे उसकी कोई कल्पना मेरे मन में भी नहीं है, तुम्हारे मन में भी नहीं है। मैंने दुनिया कम नहीं देखी है, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ हैं। निपुड़िया की आंखें नीची हो गई, जैसे कुछ ऐसी बात कह गई हो जिसे कहना नहीं चाहिए था, और उसकी अंगुलियां तेजी से तांबूल पत्र को खदीर राग से रंगने में जुट गईं। निपुड़िया की अंतिम बात मेरे मर्म में चुभ गई। वह अगर पश्चाताप करती है तो जिस नरक में पड़ी है वहां भी स्थान नहीं मिलेगा। वह कुलभ्रष्टा स्त्री है, उसके सद्गुणों का समाज में क्या मूल्य है। दुर्गुणों की तो फिर भी कुछ न कुछ पूछ है ही। मैंने उसकी कोटर साइनी आंखों को एक बार फिर देखा, उनमें आंसू भरे हुए थे। मैं बोला, न्यूनिया, तू झूठ बोलती है, तू पछता रही है, तू कष्ट में है, तू आश्रय चाहती है, तू मुझे यहाँ से हटने नहीं देना चाहती। मैं जो पहले था वह आज भी हूँ। सारी दुनिया भी तुझे मेरे आश्रय से अलग नहीं कर सकती। यह दुकान अभी बंद कर दे, जहाँ लोग तेरी कोई बात नहीं जानते। ऐसे किसी स्थान पर शांतिपूर्वक रह। मैं तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे प्रति तेरा मोह कट गया है, यह अच्छी बात है। तू इस कालिया भरी नगरी के राजमार्ग को छोड़ दे। तेरी आंखें कैसी धंस गई हैं। मैं अभागी, हाँ अभागी, तू मुझसे छिपा भी रही है। निपुणिका इस बार घायल हो गई, वह फूट फूट कर रो पड़ी। एक दो ग्राहक किसी समय दुकान पर आते दिखाई पड़े, उन्हें दूर से देखकर ही निपुणिका संभल गई। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे भीतर चलने का इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था, उसके बीचों बीच एक तुलसी का वृक्ष था। पास में एक छोटी वेदी थी और उस पर महावराह की एक अत्यंत भव्य मूर्ति रखी थी। मूर्ति छोटी ही थी, पर जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया था वह बहुत ही पका हुआ शिल्पी जान पड़ता था। महावराह के दांतों पर उठी हुई धरित्री के मुखमंडल पर जो उल्लास और दीप्ति का भाव था वह देखते ही बनता था। महावराह के दोनों हाथ कट देश पर इस प्रगल्भता के साथ टिके हुए थे और बाहुमूल की पेशियां इस दृढ़ता के साथ निकाली गई थी कि देखकर मन में एक अपूर्व विश्वास उद्रिक्त हो उठता था। मुझे समझने में एक मुहूर्त का भी विलम्ब नहीं हुआ कि ये निपुणिका के उपास्य देव हैं और निपुणिका अपने उद्धार की ऐसी ही आशा लगाए हुए है। निपुणिका ने एक बार मूर्ति को सतृष्ण नयनों से देखा, उसका गला तब भी रुंधा हुआ था, और इशारे से मुझे एक छोटे घर में बैठने का निर्देश किया। मैं बैठ गया। वह फिर बाहर चली गई और बहुत शीघ्र ही स्नान करके फिर लौट आई। मेरी ओर देखकर वह बोली, थोड़ा रुको, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वह कुशासन पर बैठ गई और महावराह के सामने रुंधे गले से एक स्त्रोत्र पाठ करने लगी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू झरते रहे। वक्षस्थल पर एक वासंती उत्तरी इस अश्रुधारा से भीग गया। मैं यह दृश्य देख एकटक देखता रहा। निपुणिका धन्य है, महावराह धन्य है, तुलसी धन्य है और मैं अभागा बाण इन तीनों को देख रहा हूँ, सो धन्य ही हूँ। मुझे एक बार अपने गर्व की तुच्छता पर पश्चाताप हुआ। किसे आश्रय देने की बात मैं कह रहा था। निपुणिका को जो आश्रय मिला है उसकी तुलना में मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नगण्य और कितना अकिंचन है। मेरे पुरुषत्व का गर्व, कौलिन्य का गर्व और पांडित्य का गर्व क्षण भर में भरभरा के गिर गए। निपुणिका को पहचानने में मैंने कितनी भूल की थी। वह भक्ति गदगद स्वर में स्त्रोत पाठ करती रही थी और मैं निर्निमेश नयनों से उसे देख रहा था। उस समय उसकी अंग प्रभा अलौकिक दिख रही थी। कोटरगत आंखें मानो उद्वेल वारिधारा से परिपूर्ण होकर प्रफुल्ल पुंडरीक के समान विकसित हो गई थी। कुंतल जाल रह रह कर इस प्रकार विरुलित हो उठते थे मानो महावराह के चरण प्रांत में गिर पड़ने को व्याकुल हो उठे हों। मैं क्षण भर के लिए भूल गया कि निपुणिका हमारी नाटक मंडली की परिचित नेवनिया है। ऐसा लगता था कि वह कोई देवांगना है और कब इस कलुष धरित्री को छोड़ ऊपर उठ जाएगी यह कहा नहीं जा सकता। मैंने इस रमणी के इस ध्यान स्थित परम प्रेम मूर्ति महावराह को मन ही मन प्रणाम किया। प्रथम दर्शन में जिसे मैंने रुलाई की हंसी समझकर अपनी सहृदयता पर गर्व किया था वह एक भद्दी भूल थी। मैंने मन ही मन अपनी अकिंचनता को धिक्कारा। इसी समय निपुणिका उठी और उसके साथ ही शांति की एक भारी स्त्री भी उठ खड़ी हुई। उसके गमन में एक प्रकार की भाव विह्वल मंथरता अब भी वर्तमान थी, मानो भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। एक बार मैंने समझा कि मैंने प्रथम दर्शन में इस रमणी को कितना गलत समझा था। करुणादीप्त मुख मंडल को अनुशोचना मानना मेरा प्रमाद था। निपुणिका आई और थोड़ी देर तक चुप बैठी रही। मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने ही शुरू किया, भट्ट तुम सचमुच मेरी सहायता कर सकते हो? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है निपुणिका? मैंने क्या कभी ऐसी बात कही है जिसका पालन करने में आनाकानी की हो? लेकिन अगर मेरी सहायता करने में कोई अनुचित कार्य करना पड़े? देख निपुणिका, मैंने अभी तक प्रत्यक्ष देखा है कि तू जिसके यहाँ आश्रय पाए हुए है उसे छोड़कर तू किसी और की सहायता की आवश्यकता तुझे नहीं है। फिर भी तू परीक्षा लेने के लिए यह बात कह रही है, मेरा उत्तर स्पष्ट है। साधारणतः लोग जिस उचित अनुचित के बने रास्ते में सोचते हैं मैं उसमें नहीं सोचता। मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ, परंतु हमेशा मैं अपने को इन दो रिपुओं से बचा नहीं सका हूँ। आज ही मैंने एक महान संकल्प किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कहाँ तक सफल होऊंगा। अनुचित कार्यों से मैं अपने को सदा बचा नहीं पाया हूँ, पर उचित कार्यों को अवसर आने पर करने के लिए मैंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की है। तू मुझे वह कार्य बता जिसमें तुझे मेरी सहायता करनी है। तू मुझे जानती है, मैं आशा करता हूँ कि मुझे अनुचित कार्य में कभी प्रवृत्त नहीं होने देगी। निपुणिका हंसी बोली, अब तुम बचने का रास्ता खोज रहे हो। मेरी जैसी स्त्री से तुम उचित कार्य में सहायक बनाने की आशा रखते हो, तुम बहुत भोले हो। इस बार मैं सचमुच विचलित हुआ, पर फिर भी दृढ़ता के साथ बोला, तो बताना मुझे क्या करना होगा। निपुणिका इस बार और जोर से हंस पड़ी, बोली, देव मंदिर का उद्धार करना है। मैं समझ गया, देव मंदिर अर्थात नारी, यह तो कोई अनुचित कार्य नहीं है। जरा हंस के मैंने कहा, तेरा उद्धार तो महावराह ने कर दिया है, तेरी परवाह नहीं है। अब और कौन रमणी विपत्ति में फंसी हुई है जिसका उद्धार मुझे करना होगा। निपुणिका ने कहा, भट्ट अब तक तुमने नारी में जो देव मंदिर का आभास पाया है वह तुम्हारे भोले मन की कल्पना थी। आज मैं तुम्हें सचमुच का देव मंदिर दिखाऊंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें छोटे राजकुल में मेरी सखी बनकर प्रवेश करना होगा और कीचड़ में धसे हुए उस मंदिर का उद्धार करना होगा। आज ही उत्तम अवसर है, महावराह ही मेरे वास्तविक सहायक हैं, उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम न आते तो भी मुझे तो यह करना ही था। बोलो भट्ट, तुम यह काम कर सकोगे? तुम असुर गृह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार करने का साहस रखते हो? मदिरा के पंख में डूबी हुई कामधेन को उबारना चाहते हो? बोलो, अभी मुझे जाना है, महावराह ने आज ही अनुमति दी है। इस सीता का उद्धार करते समय तुम्हें जटायु की भांति शायद प्राण भी देना पड़ेगा। है साहस? मैं हंसा, यह काम मैं जरूर कर सकता हूँ। केवल एक बार मैंने अपने स्वर्गीय पिता को मन ही मन प्रणाम किया, पिता आज आत्मोद्धार कर्म से विरत रहना पड़ा, समय और सुयोग मिला तो फिर कभी होता रहेगा। न जाने किस दुखनी के दुख मोचन यज्ञ में अपने आप को होम देने की पुकार आई है, आज इसी का ऋत्विक बनने दो। निपुणिका की ओर देखकर मैंने कहा, न्यूनिया मैं प्रस्तुत हूँ नेपथ्य वेश बदलने का वस्त्र ला।